भारद्वाज जी, उपस्थित सभी मान्यवर माता बंधु भगिनी, वास्तव में बिरिवाल जी ने आकर एक वाक्य यहां पर कहा, उतना कहना ही काफी है, परंतु यहां बहुत सारे दानदाता बैठे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, वो सब लोग इस काम में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। तो मेरा योगदान क्या है? मेरा योगदान बोलना है, क्योंकि आजकल मैं यही काम करता हूं, देश भर में बोलते बोलता हूं, और कुछ करता नहीं। मेरे पास उतना ही है, जितना है वो लगा देता है। तो यहां भी एक तरह से मेरी ये सेवा ही आप मानिए। आप लोगों को और थोड़ी देर बिठ के रखने के लिए, आप लोगों को कुछ उपदेश देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अपने अपने तरीके से सब लोग यहां सेवा दे रहे हैं, मैं ऐसी एक सेवा छोटी सी दे रहा हूं, क्योंकि जैसा आपने अभी भी अनुभव किया कि यहां आके जो देखेगा वो सेवा करने वाला बन जाएगा। क्योंकि यहां सेवा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सेवा की अपनी जो कल्पना है उसका दर्शन होता है। किसी कथा है महाभारत में, युद्ध जीतने के बाद जो राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद वहां एक नेवला आ गया, और नेवला यज्ञ कुंड के आसपास की धूलि में लोटपोट होने लगा। थोड़ी देर देखा उसने, लोगों ने देखा कि नेवला था, आधा अंग उसका सोने का था। फिर वो वापस जाने लगा तो पूछा युधिष्ठिर ने उसको, रोककर क्यों आए थे यहां, लोटपोट होने का मतलब क्या है और वापस क्यों जा रहे हैं? उसने कहा कि ये आपके यज्ञ से पुण्य लाभ होगा ऐसा मुझे लगा, क्योंकि आप बड़े धर्मात्मा के राज्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं निराश हो गया, वापस जा रहा हूं। तो मतलब क्या? तो बोले देखो, मेरा आधा अंग सोने का बन गया। वो कैसे बन गया? तो एक अकाल के दिनों में एक परिवार, उसको एक मुट्ठी भर सत्तू मिला था खाने के लिए बैठा था, उनके सामने अपना कुत्ता लेकर एक तथाकथित चांडाल आ गया, उसने खाने को मांगा। तो पहले जो गृहस्वामी था उसने अपने हिस्से का दे दिया, बाद में उसकी पत्नी ने दे दिया, बाद में लड़के ने और सब ने दे दिया, स्वयं भूखे रहे। फिर उसने पानी मांगा, पानी भी दिया, अपने कुत्ते को भी सब दिया, तो और वहां से चला गया। और ये भूखे रहे, भूख से वही मर गए। तो बाद में मैं वहां गया संयोग से, तो वहां की धूल में सना मेरा शरीर आधा वो सोने का बन गया, इतना उनका पुण्य था। मुझे लगा आपकी यज्ञ का भी ऐसा पुण्य हुआ, लेकिन नहीं मिल रहा है। मुझे अगर वो नेवला मिलेगा अभी कभी और पूछेगा कि आधा अंग और कहां बनेगा सोने का, मैं जो यहां भेज दूंगा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को वो ये बताने गया था कि आप अपनी सेवा का गर्व मत करो, क्योंकि सेवा में अहंकार नहीं होता, किसी प्रकार से सेवा में अहंकार नहीं होता। दुनियादारी में सेवा करना हम लोग बहुत बड़ी बात मानते, माननी भी चाहिए, अनुकरण भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब मनुष्य के नाते जन्म लेते हैं, तो विकारों की गठरी भी साथ में मिलती है, कोई नहीं टाल सकता। दुनिया की चकाचौंध में खुद को भुलाने वाले इंद्रियों भी साथ में मिलते, कोई नहीं टाल सकता। उसके चलते बहुत लोग बिना सेवा किए आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे जगत में सेवा करने वालों का सदा प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन सेवा करने वाले कैसा सोचते हैं? तुमने सेवा की तो कौन सा बड़ा काम किया। मनुष्य तो मनुष्य को कहते हैं, मनुष्य तो वो होता है जो अपने जीवन से दूसरों की सेवा करता है। पशु नहीं करता सेवा, पशु खुद के लिए देता है, उसको भगवान ने प्रकृति ने उतना ही दिया है। उसको जन्म मिलता है तो वो सोचता नहीं है मुझे जन्म क्यों मिला, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरी मृत्यु अच्छी हो ऐसा मुझे क्या करना, सोचता नहीं। उसको जन्म मिला है और जब तक मौत नहीं आती तब तक उसको जीना है, बस इतना उसको पता रहता है। तो अपने लिए खाता है, पशु पशु ही रहता है, वो पशु का राक्षस नहीं बनता कभी, न पशु का भगवान बनता है। उसको जब भूख है तो जहां रोटी मिलेगी वहां से खाएगा, अपमान मिले मान मिले दूसरों की छीननी पड़े चोरी करनी पड़े भूख लगी है तो खाएगा, और भूख नहीं है तो देखेगा भी नहीं। बैल अपनी भूख है तब तक घास खाता है, उस घास के निकट दूसरे बैल को आने नहीं देता, उसका पेट भर गया कि फिर उस घास को कौन खाता है क्या होता है उसकी चिंता नहीं, कल मिलेगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं। कभी आपने सुना है कि बैल ने आधा लक्खर घास का खा लिया और आधा कल के लिए बांध के घर ले गया, ऐसा होता नहीं है। उसको उसी क्षण में उसकी जो आवश्यकता उसका भाग है, पशु को इतना ही दिया है, इसलिए पशु कभी राक्षस नहीं बनता भगवान भी नहीं बनता, पशु कभी सेवा नहीं करता अपने लिए देता है, सेवा भी थोड़ी बहुत दूसरों की अपने लिए ही करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य को बुद्धि है, बुद्धि को स्वार्थ में लगाए तो राक्षस बन जाएगा और परोपकार में लगाए तो नारायण बन जाएगा। ये ताकत ही होने के कारण मनुष्यों के सामने अपनी करनी से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाले काम जो जो लोग करते हैं उनको हमने सराहना देनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हम मनुष्य है तो हम यही करेंगे, हम पशु थोड़ी, हमको भगवान ने बुद्धि दी है भगवान बनने की तो हम बनेंगे। एक स्वाभाविक बात के नाते वो करते हैं, मनुष्य के हृदय की ये क्वालिटी है, ये गुण है उसका, संवेदना है, करुणा है, प्रेम है।
बिजली वाला है कि नहीं आया,
दूसरों का दुख देखा नहीं जाए,
बिजली फिटिंग वाला।
इसलिए राजा रणथिदेव को जब पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने ये कहा लत हम काम है राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मरने के बाद अच्छा लोग नहीं चाहिए, न पुनर्भवन, न अपुनर्भवन यानी मुक्ति भी नहीं चाहिए, अपुनर्भव फिर से जन्म नहीं होगा, नहीं चाहिए।
पर्दा लड़का कर रखना, पर्दा
काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम
पर्दा,
तो उसके भी जीवन में ऐसी कथा है। अकाल में राजा रानी राजकुमार राजकन्या थोड़ा सा साल का बीज लेके पानी को बैठे,
बाकी
उसने मांग के सारा खा लिया, पानी पी लिया, राजा की आंखों में आंसू देखे तो उसने कहा तुमको बुरा लगता था तो क्यों दिया, उतना बुरा इसका नहीं कर रहा है आपके खाने का, अब मेरे पास का सब समाप्त हो गया, अभी तुम गए नहीं दरवाजे के सामने से, तुमको अगर अधिक आवश्यकता हो तो मैं मांग लिया तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसका दुख है। तो इंद्र प्रकट हो गए और यम धर्मराज प्रकट हो गए, उनको तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम उतर गए, अब बोलो क्या चाहिए, कौन सा लोक चाहिए, इच्छा अनुसार तुमको जो पद चाहिए वो मिलेगा, इतना तुमने किया। तो उन्होंने कहा भगवान ये सब नहीं चाहिए मुझे, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवन, कामये दुख तप्ताराम प्राणिनाम आरती नाशनम, दुख तप्त प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए मुझे इसी लोक में जिंदा रखो, ले मत जाओ, जिंदगी चाहिए इसके लिए चाहिए। ये हमारे यहां सेवा की जाती है, सेवा ऐसे की जाती है, कुछ नहीं चाहिए, वो दुख देखा नहीं जाता, उसको दूर करता। मदर टेरेसा जी से सेवा यहां हो रही, मैं कहता हूं मदर टेरेसा जी से सेवा यहां नहीं हो रही, तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन एक पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। अब कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे न बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। यहां पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे देश में सेवा ऐसी की जाए निरपेक्ष, पूर्ण निरपेक्ष, और उसमें भावना ये कि सेवा करने वाले और सेवा जिनकी की जाती हो, तो जिनकी सेवा की जाती है वो मानते होंगे कि करने वाले के रूप में हमको भगवान मिला, लेकिन करने वाला कहता है कि सेवा का अवसर देकर मेरे जीवन को स्वच्छ करने वाला भगवान मेरे साथ है, प्रभु जी है। अहंकार भी नहीं, मैं इनका उद्धार नहीं कर रहा हूं, ये मुझे सेवा का अवसर देकर मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए एक सुविधा दे रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं। समाज में ऐसी संवेदना हम जब एक दूसरे के प्रति रखते हैं तो फिर उस समाज को कोई तोड़ नहीं सकता, उस समाज को कोई गुलाम नहीं कर सकता, उस समाज का सर्वथा दुनिया में भलाई होता है। अगर अपने देश के लोगों के बारे में कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और हम इस देश के होने के बाद भी हमको उसकी संवेदना नहीं है, हम वहां जाएंगे नहीं, तो फिर जो होना है वो होता है। हाँ, जाने में कभी ताकत रहती है कभी नहीं रहती है, कभी वहां जाने की परिस्थिति रहती है नहीं रहती है, अनेक बातें रहती है, लेकिन क्या कारण रहा कि आप गए नहीं, ये परिस्थिति नहीं थी। परिणाम तो वही आता है, आप समय पर पहुंचे तो अनर्थक आ गया, आप नहीं पहुंचे अनहोनी हो गई। आग में हाथ आपने गलती से डाला कि जानबूझ कर डाला, ये आग नहीं थी। और इसमें संपूर्ण देश में अगर आज लोगों को कुछ दिखाना, अपने देश के लोगों, बाहर से लोग आएंगे तो उनको हम यहां के दर्शनीय स्थल दिखाएंगे, सारी बातें दिखाएंगे, लेकिन अपने देश के बालकों को क्या दिखाना है? देश का गौरव बढ़ाने वाले स्थान दिखाने हैं, देश का गौरव अपने मन में उत्पन्न करने वाले स्थान दिखाने हैं, और देश के प्रति अपने कर्तव्य की भावना जगाने वाले स्थान दिखाने हैं। आधुनिक समय में जहां जाने से देश के प्रति गौरव जगता है वो, और जहां जाने से देश के प्रति अपना कर्तव्य आंखों के सामने साफ होता है वो, ये दो स्थान, ये वास्तविक तीर्थस्थल है। मुझे बड़ा आनंद है, 5 दिन में यहां रहा हूं भरतपुर में, मुझे दोनों प्रकार के तीर्थस्थलों का दर्शन करने का भाग्य प्राप्त हो गया। महाराणा सांगा के संग्राम स्थल पर मैं गया था, कल महाराजा सूरजमल जी के उस किले का और राजमहल का दर्शन मैंने किया, एक गौरव जागा। जिस वीरता के साथ और दृढ़ता के साथ हमने अपने देश की प्रकृति संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कुशलतापूर्वक वीरतापूर्वक प्रयास किए, ये हमारी विरासत है, गौरव जगह। और आज यहां आके देख रहा हूं कि क्या कर्तव्य है देश के प्रति, नई पीढ़ी का, हमारा सबका, उसका वस्तुपाठ यहां पर रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा। ऐसा मानते हैं युग परिवर्तन जिनके आविर्भाव के बाद शुरू हुआ वो रामकृष्ण परमहंस, उनका संदेश क्या था? उनका संदेश यही था, शिव भावे दिवस है। भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, यानी जैसे आसमान फट रहा है तो वो शिखड़ा कहां कहां लगाओ उसके लिए, बैठक कहां कहां करना, इतने जगह फट रहा है, ऐसी स्थिति लगती है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि शिव भावे जीव सेवा तो वो सब ठीक हो जाएगा,
क्योंकि इतने जगह फट रहा है उसका कारण ये जोड़ने वाली बात का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। जोड़ने वाली बात यह है सब में राम है, घट घट में भगवान शंकर बैठे, शिव भावे जीव सेवा करो, मेरा अपना है उसका कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा अपना है, जर्मनी से इंग्लैंड से अमेरिका से कोई विदेशी आके उसकी सेवा करे क्यों करे, मेरा अपना है तो मैं देखूंगा, वो अनाथ है क्या, दुनिया की दया पर पलेगा क्या, नहीं वो मेरी अपनी सेवा पर पलेगा, बड़ा होगा और सेवा करके हाथ पैर से ठीक हो गया सक्षम हो गया तो वो सेवा मांगेगा नहीं, वो सेवा देने वाला बनेगा, ऐसी सेवा मैं करूँ, ऐसी सेवाएं होती। शिव भावे जीव सेवा करो, ये संदेश है हम सबके लिए। सेवा क्या एक प्रकार है, अभाव का दूर करना, अभाव को दूर करना, जो भी अभाव वो दूर करना, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है अभाव को दूर करने की कला सिखाना, ये सेवा हो। अन्न का हवा है, अन्न मिलता नहीं, तो कहते हैं कि भूखे आदमी को एक मछली दे दो तो उसका एक दिन पेट भरेगा, विदेशी चावल है इसलिए उसमें मछली है, एक मछली दे दो तो उसका पेट भरेगा, उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो जीवन भर उसके पेट की व्यवस्था अपने आप हो जाए। तो दूसरी एक सेवा है, ये भी सेवा। तीसरा है उसको ये सिखा दो कि भाई सबको मछली पकड़ना कैसे सिखाना, तो किसी की सेवा करने का प्रसंग ही नहीं आएगा, सबके भाव दूर हो जाएंगे। और चौथी सेवा है कि ये मैं करूं, किसी के पास मछली नहीं तो मुझे लगे कि उसको मछली देनी चाहिए, उसको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए या उसको मछली पकड़ना सिखाना चाहिए ताकि और जीवन भर का उसका अभाव समाप्त तो हो जाए, अथवा देश में मछली पकड़ना सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भूखा न रहे। ये मुझे लगता क्यों है, जब मुझे लगता है कि ये मेरा अपना है और मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन इन सबके लिए है जो मेरे अपने हैं, तो ऐसा आदमी बनाना ये सर्वश्रेष्ठ सेवा। और चारों प्रकार की सेवाओं का एकत्रित दर्शन आपको यहां मिल रहा है, जिनका अभाव है उनका अभाव दूर करने की प्रयास कर रहे, अभाव दूर होने के बाद उन लोगों के मन में ये आ रहा है कि हम भी इसी काम में जुड़ जाए, और एक जगह केवल दो व्यक्ति उनकी सेवा नहीं कर रहे, धीरे धीरे वो इसका विस्तार कर रहे हैं ताकि सब लोग इसको करने लगे। और इसमें से हम लोग ये शिक्षा भी ले रहे हैं कि ये करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, तो मैं अगर सराफा सोची हूं का सेक्रेटरी हूं और मुझे ये देखने को मिल गया तो मेरे मित्रों को भी मुझे लाना चाहिए, क्योंकि सबने ये करना चाहिए। तो ऐसे सेवा के चारों पहलुओं का एकत्रित दर्शन कराने वाला शिव भावे सेवा जहां चलती है, ऐसा निरपेक्ष सेवा कार्य हमने देख लिया, उसका दर्शन किया, तो हमारे जीवन में कुछ पवित्रता आ गई। उसमें डुबकी लगाएंगे हम और बाहर से इसकी सहायता करते रहेंगे तो उस पवित्रता की मात्रा फिर और बढ़ जाएगी। हम भी इसी काम में लग जाएंगे तो हम तीर्थ में डुबकी लेकर तीर्थ रूप हो जाएंगे। और मैं मराठी भाषा का बोलने वाला हूं, मराठी मेरी मातृभाषा है, उसमें सबका पालन पोषण करने वाले पिताजी को कहते हैं तीर्थरू। अपने पिताजी को जब पत्र लिखता है कोई तो लिखता है तीर्थरू, क्योंकि जो तीर्थरूप बनता है वो प्रभु जी की सेवा करते करते स्वयं प्रभु बन जाता है, दुनिया का पालक बन जाता है। आप सब लोग प्रभु जी की सेवा में डुबकी लगाओ, सेवा करते करते आपका जीवन तीर्थ रूप बन जाए, ये शुभकामना आपको देता हुआ और आपको धन्यवाद देता हुआ ये मेरी श्रद्धांजलि इस कार्य के प्रति अर्पित करता हूँ और विराम लेता हूँ। नमस्कार।